पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमाप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरक्तिषे हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभाम सती देव प्रणमामि हरि प्रिय हा देवी काकू भरगद गदयाद्वाचा जाचे निपत्त भूमि दंडवत उद्भटार्थी अस्य प्रसाद विधस्य जनस्य कृष्ण गणनाथिके तो मणि गणना अंग श्यामलिम छटाभिरभितो मंदे कृतेन्दीवर जगंजागुरु शांतिधरतम पत्तंबर बिंदारण्य निवासिनम हृदय सद्दामाभिरामोदरम राधास्कंद निवेशितो जलभुजम ध्यायेन दामोदर भक्त्यादिहीनापराधलक्ष्ये चित्तास्य कामादितरंग मध्ये कृपामयीं त्वं शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणाय गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो वैराग्यजुगभक्तिरसंप्रयत्नैपायन्माननभिक्षुमन्दं कृपां बुधिर्जा परदुःखदुःखी सनातनस्तं प्रभुमाश्रयाम श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददातु सतदा यं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकात्तरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानुतस्मि तवैवास्मि तवैवास्मि यजमानतया विना इति विज्ञाय राधे तं मां जानन्ति के आज एकादशी है। आज ठंड के वजह से शायद बहुत कम लोग आ पाए। दुर्दिन ठंड नहीं, दुर्दिन वह है जिस दिन भगवान का कथा कीर्तन हो, और जिस दिन भगवान की कथा हो समझना चाहिए कि ये सुदिन है। जितने हम लोगों के सब दिन हैं उन दिनों में एकादशी व्रत सबसे श्रेष्ठ है। सब व्रतों में जो भी व्रत जितना भी फल दे सकता है एकादशी उससे कोटि गुण अधिक फल देती है। वैसे तो जो भी इच्छा करो वही फल दे रही, किंतु भक्ति की ये जननी है, माँ है। सब व्रतों को छोड़ करके भी एकादशी का व्रत करने वाला भगवान का प्रेम पाता है। इसलिए सब व्रतों को छोड़ करके भी इस व्रत का पालन करने की चेष्टा करनी चाहिए। और उस दिन एकादशी के दिन उपवास करके अपनी समस्त इंद्रियों के द्वारा भगवान के निकट वास करना चाहिए। उपवास माने, उप माने होता है निकट, वास माने स्थिति। भगवान के निकट स्थिति करनी चाहिए। कैसे स्थिति होगी? जहाँ भगवान का नाम कीर्तन होता है वहाँ पर भगवान सर्वत्र सब समय रहते हैं, सब प्रकार से रहते हैं, अपने समस्त भक्तों के साथ में वहाँ पर रहते हैं। इसलिए तीर्थ स्थलों में, उसमें भी मंदिर में श्री राधा कृष्ण का या भगवत मंदिर हो, जहाँ पर कि तुलसी की सेवा हो रही हो, जहाँ पर वैष्णव लोग रहते हैं, साधु संत लोग रहते हैं, वहाँ पर उपस्थित होकर के भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करना, भगवान का नाम कीर्तन करना, उनका स्मरण करना, इससे बढ़कर के एकादशी पालन और कुछ नहीं है। इसलिए इन सब लोगों का नियमों का पालन यदि करता है, विशेष करके आज की रात्रि में जो लोग उपवास करके रात में जागरण करते हैं और उपवास किए हुए हों निर्जला, उसका तो महात्म ही क्या। यदि कुछ अनकल्प लेकर के भी और रात्र जागरण करेंगे, नहीं होने पर ऐसा भी भगवान का नाम कीर्तन करेंगे, भगवान की कुछ भी लीला कथा सुन लेंगे, और विशेष करके ये मथुरा और ब्रज में, तो उसका महात्म का कोई वर्णन नहीं कर सकता, जब क्या क्या उसका हो जाएगा। इसलिए खूब विश्वास के साथ में एकादशी का पालन करना चाहिए, किसी प्रकार से गलती से भी नहीं छूट जाना चाहिए। हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं, करते तो हैं किंतु जहाँ थोड़ा सा संग छूट गया बस एकादशी भूल गए, जे एकादशी कब है और एकादशी नहीं कर, किंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा होने से अनुताप, पश्चाताप और प्रायश्चित भी करना चाहिए। एक आदमी यदि अनजान में भी एकादशी का व्रत कर ले तो उसको भगवत भक्ति हो जाए, और यदि वो तीर्थ में रह करके मथुरापुरी में, और यदि श्रद्धा के साथ में एकादशी करेगा तो उसका फल ही का वर्णन कदापि नहीं किया जा सकता। हम लोग गृह भगवतामृत का पाठ करते हैं, इसमें ब्रज में रह करके और कृष्ण की सेवा जिन लोगों ने की थी उसके महात्मा का वर्णन यहाँ पर कह रहे हैं, बतला रहे हैं। पहले कीट पिपंग हिरणों का महात्मा वर्णन किया जो ब्रज के हैं, घासों का वर्णन किया, उनकी चरण की धूलि की वंदना की, और जो लोग कृष्ण के चरण कमलों से किसी प्रकार संपर्क में आए वो सब लोगों की भूरी भूरी महिमा इसमें वर्णन की गई। अंत में उन्होंने वात्सल्य रस के वर्णन में उन्होंने बताया, जसोदा माँ की तो बात ही क्या, जसोदा माँ की तो और नंद बाबा के तो वात्सल्य की तो बात ही क्या है। जो लोग किसी प्रकार से ब्रह्मा ने जब गोचारण के समय में बछड़ों को और सखाओं को हर लिए, उस समय कृष्ण जितने बच्चे चोरी गए थे उन सब का रूप ले लिया और बछड़े बन गए, और एक वर्ष तक उन माताओं का और गैयाओं का दूध पान किया। उनकी महिमा का वर्णन करना ही बड़ा कठिन है, तो जसोदा माँ की तो बात है क्या, जो बड़े प्रेम के साथ में सारा जीवन उनको दूध पिलाती है, उन्हीं का वो वर्णन करते हुए बतला रहे हैं। जसोदा मैया की महिमा तो अथाह और अनंत है। कृष्ण के प्रति थोड़ी सी भी किसी की भक्ति हो तो उसका जीवन कृतार्थ हो जाता है। आज जसोदा मैया की तो बात क्या, उसका कहने का साहस नहीं कर रहे हैं, केवल वात्सल्य रस का वर्णन करके छोड़ दिया। जब कृष्ण को कितना प्यार करते हैं, एक समय की बात है, कृष्ण चले गए हैं वृंदावन से मथुरा, और उस समय में मैया घर का काम सब छूट गया, मैया का रसोई किसके लिए बनाए, वो रसोई घर में साफ नहीं हुआ, लीपे पुते नहीं गए रसोई घर, और चूल्हों के ऊपर में मकड़सों ने जाल बुन दिया, मकड़ों बर्तन औंधे मुख पड़े हुए हैं, न कोई मांजने वाला है और न कोई रसोई बनाने वाला, न कोई खाने वाला, जब कृष्ण ने तो किसके लिए भोजन बनाया। मैया बड़ी दुखी है, दोपहर का समय कृष्ण की विभिन्न प्रकार की बाल्य लीलाओं का स्मरण उनको आने लगा, और भाव में वो एकदम डूबने लग गए। उन्होंने घर में जितने कृष्ण के खिलौने थे, गैया का खिलौना, उनकी छोटी सी बांसुरिया, पहनने की झुंगली बचपन वाली, सबको एकत्रित किए और गठरी में बांध लिए। अब तो प्रौढ़ावस्था में भी वृद्धा के लक्षण उनमें आ गए थे, आंखों से कम भी दिखने लग गया, सब समय रोती रहती हैं, डकारती रहती हैं। ठीक दोपहर के समय में, जेठ की दोपहरी में, सबको संभाल करके गठरी बांध ली और गठरी बांध करके चौकट तक आ गई। इतने में पास की कोई सहेली सखी वहां आ गई और बोली, सखी कहाँ जा रही है? इतने में कुछ पास के और भी लोग आ गए, नहीं मैया तू कहाँ जा रही? पहले तो वो बोल ना सकी, जहाँ कुछ बोलने की इच्छा हो और तहीं गला रुद्ध हो जाए और अत्यंत विवश होकर के रोने लगी। अंत में वो बोली, मैं वही जा रही हूँ जहाँ हमारा कन्हैया है। अरे कन्हैया तुम्हारा है यहाँ? नंदगांव की बात, और ये है मथुरा कृष्ण। जेठ की दोपहरी और तू बूढ़िया, अब कैसे जाएगी तू दोपहर में? पैर जल रहे हैं, ऊपर से खूब तीव्र धूप पड़ रही, कैसे जाएगी तू? तो मैं उसके बिना रह ही नहीं सकती। और तू जाकर के क्या करेगी? वहां पर जाऊंगी और वहां पर डोही पर जाकर के कहूंगी, मैं देवकी रानी से मिलना चाहती हूं, रानी देवकी से। यदि किसी ने देवकी को दिखला दिया तो देवकी के चरणों में मैं गिर पड़ूंगी और कहूंगी, मैं तेरी जन्म जन्म की दासी बन जाऊंगी, मैं तेरे लाला की सेवा करूंगी, रसोई बनाऊंगी, हमारा लाला नहीं, मैं तेरी नौकरानी बन करके रहूंगी सदा के लिए। तू अपने घर में रख ले, तुम्हारा जूठन जो कुछ बच जाएगा उसी को खा लूंगी और उसकी सेवा करूंगी, बस इतना ही चाह। बस कहते कहते भाव में भी भोर होगा और वहीं पर गिर पड़ी। जिसका भगवान के प्रति पुत्र के रूप में इतना स्नेह है, उसको कृष्ण क्या दे सकते हैं? उनको देने लायक कुछ है भी नहीं है? कुछ भी देने लायक नहीं। कहते हैं कि उतना बच्चों को मारने वाली, रुधिर उनका पान करने वाली, कच्चा पान कर जाती थी रुधिर, रक्त बच्चों के लिए ग्रह थी, राक्षसी बालघातनी तो थे ही, उनके रक्तों का पान कर जाती थी उतना। और वो ब्रज में आकर के कृष्ण को लेकर के दूध पाने के पिलाने के बहाने कृष्ण को विष भरा स्तन उनके मुख में दे दिया, लाला लाला कहने लगी और यशोदा मैया जैसा वेश बना दिया था, और उसको उन्होंने धातृउचित गति दे दी। गोलोक धाम में अपनी माँ जैसी, धात्री जो पालती है वैसी गति उनको दे दी। तो इनके पास में और क्या है जो दे सकते हैं कृष्ण? किनको? अपनी माँ को तो बात छो, बड़े प्रेम से एक बरस तक जिनका स्तनपान किया, गायों का और उन माताओं का, और जिससे कृष्ण की देह की पुष्टि हुई। दूध से क्या होता है? देह की पुष्टि हुई, तो कृष्ण के शरीर की पुष्टि हुई। और पिए कैसे दूध, और वो पिलाई कैसे दूध? बड़े प्रेम के साथ में एक दिन नहीं 365 दिन तक खिलाती रही, अपना पुत्र ही मान करके एकदम पुत्र। तो वैसे को कृष्ण क्या देंगे जब उसके लिए ही मुक्ति से ऊपर खींचते थे, तो इनको क्या है? इसके लिए ब्रह्मा भी चार सिरों से मस्तकों से विचार करते हुए कुछ विचार नहीं कर पा रहे, उनको क्या देंगे? कृष्ण चिंतामणि है। चिंतामणि माने क्या? जो कुछ हम चिंता करेंगे, कामना वासना हमारे हृदय में रहेगी, वो दे देंगे। जो कुछ भी चिंता करो वही सब दे देंगे। ऐसी कोई चीज उनके यहाँ नहीं है जो आप मांगे और नहीं दे सकते। यदि कोई व्यक्ति सकाम रूप में भी उनकी उपासना करता है तो उसके समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। आज यदि निष्काम रूप से यदि करता है और उसके ऊपर यदि प्रेम से करता है उनकी सेवा, तो फिर क्या नहीं देंगे? जैसे सकाम में भी ले लो, वृत्रासुर और इंद्र का युद्ध चल रहा है। इंद्र भगवत भक्त हैं किंतु सकाम भक्त हैं। इंद्र ने देखा ये वृत्रासुर अभी हम लोगों को मारकर स्वर्ग का राजा बन जाएगा और हमारा राज्यपाट सब छीन लेगा, इसलिए बड़े बड़े देवताओं को लेकर और इन पर आक्रमण किया और ये भी सब सेनाओं को लेकर, और अकेले तो बलवान था ही वृत्रासुर, दोनों में भयानक युद्ध छिड़ा। युद्ध में वृत्रासुर इतना बलवान था कि उनको परास्त करने पर और परास्त होने वाले थे। तो ये कहता कि भाई परास्त हो रहे हो तो वज्र से हमारे ऊपर में आक्रमण करो, वज्र से मुझे मार दो। अपने मरने की बात अपने आप ये कह रहे हैं, क्यों? इसमें हमारा लाभ है मरने में, लड़ाई तो करना हो किंतु मैं मरना चाहता हूं। क्यों? इस तामसिक शरीर के द्वारा, इस दैत्य शरीर के द्वारा भगवत भक्तों की और भगवान की सेवा नहीं होगी। रावण ने भी ऐसा कहा था, तामस देह के द्वारा हमारा भगवत भजन नहीं होगा, इसलिए शत्रुता करके मरना ही अच्छा है, शत्रुता करके मरना सहज है, किंतु भजन हमसे नहीं होगा। इसलिए लोगों ने समझाए, सब लोगों ने, यहां तक उस स्त्री ने भी समझाया, किसी की बात नहीं माना, हठ में लगी। अब हमको तो जैसे तैसे रार करके ही, तो ये समझ रहे हैं कि अब जब तक हमारा शरीर यह नष्ट नहीं होगा, यह हमारा शरीर अपना शरीर नहीं है, शरीर के ऊपर में शरीर है, असल में हमारा इसके भीतर में कोई शरीर है और बाहर से ये माया का शरीर मिला हुआ है, हमने माया के शरीर को ही अपना शरीर माना, 100 वर्ष के लिए उधार मिला है। और यदि किसी ने गड़बड़ी कर दी, असदाचार किया, खान पान का और सबका विषय में संयम नहीं बरता है, तो कोई 50 वर्ष में, कोई 10 वर्ष में, कोई 20 वर्ष में, कोई 50, कोई 60, कोई 70, इसी के बीच में मर जाते हैं। अधिक से अधिक करीब करीब 100 वर्ष की कलयुग में आयु रखी गई है, तो इसके लिए उधार दिया गया है। इस उधार दिए गए शरीर को ही, कपड़े को ही यदि मान करके और असल शरीर की उपेक्षा कर दी और भगवान का भजन नहीं किया जिसके लिए आए हैं, तो फिर हाथ मलते हुए पछताना पड़ेगा। पूछेंगे दूत जम के, क्या किया तुमने? उस समय कोई उत्तर देते नहीं बनेगा। तो ये कह रहे हैं इंद्र, बराक इंद्र, बराक माने दुर्भागा, दुर्भागा इंद्र, तुम लोगों से दुर्भागा इस विश्व ब्रह्मांड में कोई व्यक्ति नहीं। तो इंद्र ने कहा कि क्यों? क्यों हम लोग दुर्भागा? तो दुर्भागा इसलिए कि भगवान के चरण कमलों के पास में रहते हुए भी तुम उनसे भगवत भक्ति कदापि नहीं मांग करके अपने राज्य की रक्षा उस प्रभु से मांगते। जहां पर मान लिया कि कोई दाता बैठा हो देने के लिए दानी, और उसके पास में देने के लिए बहुत कुछ है, उसके पास में मणियां है, असरतिया कोहनूर हीरा है और कोहनूर हीरों से भी अधिक चिंतामणि है, जो कुछ मांग लो दे, और उस व्यक्ति से तुमने कहा कि हमको एक हाथ लोहे की जरूरत है रॉड की, या उसे कोई थोड़ी सी चीज मांग ली, हमको चार आना पैसे आठ आना पैसा चाहिए, तो उस बेवकूफ ना क्या है, उसके पास में मणि मिलने से भी मिल जाती थी, कहनूर हीरा से भी अधिक कीमती खजाना मिल सकता था। नहीं, ऐसे भगवान जो हैं अखिलार्थ दर सब कुछ देने वाले, प्रेम तक देने वाले, ब्रज का भाव भी देने वाले, और उनसे ये सब कुछ न मांग करके तुम कहते कि हमारा राज्य है इसकी रक्षा कर दो बस, कोई लेने ना पाए तुम्हारा जैसा और कोई दुर्भाग्य, इसलिए तुम जल्दी से ये अस्त्र उठाओ वज्र, उसी से मेरी मृत्यु हो सकती है अन्यथा नहीं होगी, जल्दी से मुझे मार। जबकि वो उठाए भी वज्र, किंतु जब वो दहाड़ दिया खूब जोर से चिल्लाया और उनके तरफ में बैठ गया और हाथी को अपने एक गदा से मारा, तो उसका हाथी 50 कदम पीछे चला गया और उनके हाथों से वज्र गिर गया और निहत्थे हो गए। उस समय चाहता तो उन्हें मार डालता आसानी से, तो उसने कहा कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, तुम्हें वज्र फिर से उठाओ और मुझे मारो, ऐसा भी तुम जल्दी से मारो, डरो मत, संकोच मत करो। इंद्र ने कहा जी मैं इसके ऊपर में वज्र प्रहार करूं, भक्ति की इतनी बातें कहता है जो हम मुझे पता नहीं, और भगवान के प्रति कैसा अनुराग है। 3-4 श्लोक बोले जे प्रभु हमको धन नहीं चाहिए, विश्व में मैं राजा नहीं बनना चाहता, मैं विश्व का सम्राट नहीं बनना चाहता, विश्व की कोई संपत्ति नहीं चाहता, मैं स्वर्ग नहीं चाहता, मैं अपवर्ग नहीं चाहता, मैं ब्रह्मा का पद नहीं बनना लेना चाहता, ब्रह्मा भी नहीं बनना चाहता, मैं मुक्ति भी नहीं चाहता अपवर्ग, बस आपके चरणों में भक्ति चाहता। अरे भाई तुम ये मांग लो, तुमको सुंदर स्त्री की जरूरत है, तुमको राज्य की जरूरत है, ब्रह्मा बनना चाहते हो, ये सब चीजें ले लो, ये कम है? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान की भक्ति, मुझको चाहिए सेवा चाहिए। कैसी सेवा चाहिए? तब उन्होंने फिर बतलाया मुझे अजात पक्षायु मातरम खवा, जिस प्रकार से जिन बच्चों के पक्षियों के माताएं नहीं माताएं हैं वो चली गई हैं घास चरने के, कहीं चरने के लिए गई, और इनके पंख नहीं अभी आए हैं और आंखें भी अभी ठीक से नहीं खुली हैं, वो बच्चे प्रतीक्षा कर रहे हैं अपनी मैया के लिए, मैया कब कुछ लाएगी खिलाने के लिए मुझे, और बोल भी नहीं सकते हैं, स्मरण कर रही हैं मैया कब आए मैया कब आए। इसे 2 लाभ है, मैया आते ही उल्लू जो बच्चों को खा जाते हैं या नेवले खा जाते हैं या और कोई चीज खा लेता है, तो उनसे डर से हम बच जाएंगे, डर समाप्त हो जाएगा, और दूसरा बात मैया हमको खिला देगी तो मैं खा लूंगा, इसके लिए मैया के लिए रो रहे हैं स्मरण कर रहे हैं, हमारा मन भी भगवान के लिए ऐसे ही स्मरण करे, इसमें सकाम भक्ति है, स्मरण कर रहा है उनको। फिर सोचा जी इसमें तो कुछ स्वार्थ है, स्वार्थ नहीं रहना चाहिए, इससे कम स्वार्थ किसमें है, बछड़ा अपनी मैया के लिए जैसा डकारता है मैं वैसे ही भगवान नाम कीर्तन करता हूं, जो समय भगवान को बुलाऊ। फिर सोचा जी इसमें भी बछड़ा दूध पीने के लिए डकारता है और रोता है, तब फिर तीसरा कहा विशुतं विषन्ना मनोरम अरविंदाक्ष
प्रियं प्रियवंश।
कहते हैं कि यदि जैसे प्रिया है उसका पति परदेश में चला गया हो और वो बहुत दिनों के बाद में आने वाला है, उसके लिए प्रिया जिस प्रकार से एक एक क्षण के लिए घर में जाती है, बात अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए, जैसे स्मरण करती है और बच्चे उसको कहते हैं अभी नहीं आए, अभी नहीं आए, और साथ साथ में कार्य में रत है, कभी घर से बाहर देखती है ये आए रास्ते पर कि अभी नहीं आए, गाड़ी लेट हो गई, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, स्मरण भी कर रही है, कीर्तन भी कर रही है, और सेवा के लिए पहले से सुंदर मधुर पानी, निर्जल एकदम सुंदर निर्मल पानी रखा है, खाने के लिए सुंदर सुंदर गर्म गर्म चीजें बना करके रखी, आएंगे तो उनको खिलाऊंगी, पलंग पर अच्छी चादर दे करके उनके बैठने के लिए स्थान भी कर रखा है, सेवा की भावना भी, किसी चीज की लालसा उनसे नहीं, उनकी सेवा की लालसा, ये जो है उस बच्चे से भी और बछड़े से भी ये श्रेष्ठ है, ऐसी भावना, इस भावना से भगवान को बुला रहे हैं सेवा करने के लिए, मैं कब ऐसा होगा, इसलिए इंद्र जल्दी से मारो, बराक इंद्र क्या मुझे मारेगा, हे प्रभु आप ही हमारी ये कर। फिर तीसरे चौथे श्लोक में बोलते हैं ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतस्व कर्म भी तन्मायातु ननाथ हुआ। कहते हैं कि मैं इस संसार चक्र में अपने कर्म के फेर से जहां जहां जन्म लूं और जहां जहां जाऊं, हे प्रभु एक बात आप करना, मुझको आपके भक्तों का संग हो, उत्तम श्लोक जनेषु सख्य, उनसे सख्य भाव हो, मित्रता हो, और उनके मुख से आपकी लीला कथाओं का श्रवण कीर्तन कर सकूं, बस मुझको यही चाहिए, जहां भी हमारा जन्म हो हमको स्त्री पुत्र परिवार धन संपत्ति और सबसे त्वनिक भी कोई भी सरोकार कोई भी मतलब नहीं है, इन सब चीजों को एकदम मैं नहीं चाहता। इंद्र ने देखा जी ऐसी सुंदर सुंदर स्तौर स्तुतियां कर रहा है, इसको मारने से तो महा अपराध का अपराध लगेगा, भगवान मुझको क्षमा नहीं कर सकते, इसलिए उनका आश्रय नहीं उठ रहा है। इंद्र सकाम थे और ये क्या थे, भक्त थे, भले ही इनका शरीर असुर कुल में हो जाए कोई भी बात नहीं, इसलिए जैसा भी कोई जन्म हो, जहां पर भी जन्म हो जाए, आसुरिक भी जन्म है वहां से भी भगवत भक्ति हो सकती है, जैसे प्रहलाद महाराज जी को भी, वृत्तासुर को भी, विभीषण को भी ऐसा देखा जाता है, भक्ति जहां भी रहे, अत्यंत नीच घर में जन्म होने पर भी वहां भक्ति हो सकती है, उत्तम घर में जब भी जन्म ले और न भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है, इसलिए सकाम भक्त वाले भी जो हैं इंद्र, इनको भी ये यदि भक्ति करते हैं कुछ तो इनको भी छोड़ नहीं देंगे, क्या करते हैं जो चाहते हैं भोग उसको पूरा दे देंगे, और अंत में क्या करेंगे, उनको भी मांगना जो मांगते हैं सकाम भक्तों की कामना को दे करके, और अंत में उसको भी भगवत भक्ति दे देते हैं। जब भगवान ऐसे हैं तो जो प्रेम पूर्वक जो करते हैं उनकी तो बात ही क्या है, इसीलिए कहते हैं तासाम अविरतम कृष्णे कुर्वती नाम सुते क्षणम न पुनः कल्पते राजन संसारो अज्ञान संभव। भला ऐसे लोगों के लिए जो कि इन्होंने इतना दूध पिलाया प्रेम पूर्वक, अज्ञान संभव जो संसार है कभी इनको हो सकता है, संसार माने क्या, संसार किसको कहते हैं, अज्ञानता संसार का कारण है, कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, कृष्ण को छोड़ करके संसार में सुख है ऐसा समझने वाले लोग अज्ञान, इसलिए कृष्ण को भूल जाना ही और ये संसार को स्मरण करना है, इनकी सेवा में लगना यही अज्ञान है, और इसी अज्ञानता के वजह से ये संसार कल्पित है। कल्पित है माने क्या, संसार है नहीं, हमने कल्पना करके बना रखा है। अजय कैसे बना रखा है, जैसे कोई गुरुजी थे, एक चेला के साथ में कहीं गए, उनको भूख लगी तो उन्होंने कहा चेला को, जे चेला बाजार से खोई मिलती है, खील धान से खील बनती है ना, खील ले आना, आज हम लोग रात में यही लेकर के वो खील लाने का। एक खंभा था दुकान के सामने और खंभा को ऐसे किए हुए था, उसने कहा कि भैया हमको खील दे दो, खंभा यहाँ पर है, बस खंभा को लपेट करके और वहां पर खील ले रहा, ले लिया भर गया। जब जाने को हुआ तब देखा यदि हम छोड़ देते हैं तो सब खिल गिर जाएंगे, इसलिए सोचा कि खंभे ने ही हमको पकड़ लिया, मैं जा नहीं रहा। ये कल्पना है, खंभे ने उसको नहीं पकड़ा, उसने खंभे को पकड़ लिया, वो छोड़ दे और वो छूट जाए। ऐसे ही संसार ने या माया ने हमको किसी ने नहीं पकड़ा, हमने माया को पकड़ रखा है, इसमें दोष माया का तनिक भी नहीं है। भगवान कहते हैं कि ये संसार तेरा है, ये तेरा संबंधी है, कुटुंबी है, अमुक है, तमुक है, वो कहते हैं न, हमने जानबूझ करके रखा, आज ही छोड़ दो आज ही छूट जाएगा। किंतु ये एक ऐसा मोह है जो हम लोगों को क्या, ब्रह्मा और शंकर जैसे लोगों को भी, ब्रह्मा और शंकर को नहीं, उनके जैसे दूसरे लोग यदि हों तो अभी उनको ये मोह और ममता और माया नहीं छोड़ती है। हम लोगों की तो बात सब जानते हैं हम, ऐसा करने से बंधन होगा, छोड़ देना चाहिए। हमने किसी किसी समय सुना है जहां हम कीर्तन में जाते हैं तो बड़े बड़े कीर्तन करने वाले आते हैं, इतने लंबे बाल, खूब सुंदर और कपड़े लत्ते सब सुंदर सुंदर सब कीर्तन गाते हैं, चार जनों मिले खाट उठाए, चार जन मिल करके वो अंतिम जो खाट होती है ना, बांस का बना लेते हैं और उसको उठा लेते हैं और उसको लेकर के चलते हैं और उस पर सफेद डाल देते हैं कपड़े और बड़े बड़े वैराग्य की बात करते हैं। किंतु इतना भी वैराग्य यदि उनमें आ जाता, कोई वैराग्य का गंध भी आ जाता तो कल्याण हो जाता। लंबी लंबी बातें करते हैं वैराग्य की, किसी से पूछ लो ये संसार अच्छा है कि बुरा, सभी लोग कहेंगे ये संसार अच्छा, किंतु छोड़ता क्यों नहीं आदमी। अच्छा मान लिया कि संसार अपनी माता पिता छोड़ दिया और फिर धर्म की मैया, धर्म के बाप और ये सब बना लेता है, बड़ा प्रेम कर लेता है। अच्छा छोड़ दिया और फिर ये वैभव को क्यों पकड़ता है, सब जानते हैं। किंतु मोह ऐसा है ना, छोड़ता ही नहीं है, प्रतिज्ञा करके चले थे, अब हम हे संसार तुमको प्रणाम करके मैं अब चल रहा हूं, अब मेरी माया ममता यहीं पर छोड़ रहा हूं। कि तुम ममता गई नरा, ममता गई, वो ममता फिर से यहां पर जन्म लेकर के हमारे हृदय और फिर ममता जोड़ना आरंभ कर दिया, फिर वैसे से भी लाखना भी पड़ गया। ऐसी मई श्मशान में गए, किसी को जलते हुए देखा, अब संसार नहीं गए, यही तो संसार है। किसी का प्यारा से प्यारा लड़का या प्यारा से प्यारा पति मर गया और उसको देखा जी ये जल रहा है, और दे करके वैराग्य आया, छोड़कर ये सब संसार बेकार का दुखमय है। और फिर वैराग्य आया और थोड़े देर के बाद में ही मोह ऐसा घेरा जी बस वो वैराग्य रहता नहीं। इसलिए वैराग्य करना, संसार का मोह छोड़ना बड़ा भारी कठिन है। एकादशी इत्यादि तिथियां और भगवान की लीला कथाएं इसीलिए हैं। बड़े बड़े साधु संतों को भी मोह व्याप लेता है। वृंदावन में ऐसे आश्रम है जो राजाओं के राजभवन नहीं है, उसमें ऐसे सब सुख है। इसलिए कहते हैं कि तासम अविरतम कृष्णे कुर्वती नाम सुतेक्षणम, सबको छोड़ करके कृष्ण के प्रति ही पुत्र की बुद्धि जिन्होंने की, सुत इक्षणम मैंने सूत जैसा देखा, पुत्र नहीं है पुत्र जैसा देखा, उन्होंने तो एक वर्ष के लिए पुत्र माना और बाकी के लिए कृष्ण को देखकर के पुत्र ही जैसा उनको माना। उनको ये कृष्ण क्या देंगे, साधारण इंद्र इत्यादि को जो मांगा वो दे दिया, अंत में भक्ति भी दिया, इन लोगों को क्या देंगे, इन लोगों को कुछ देने योग्य नहीं। कहते जो अकिंचन है, अकिंचना निरभिमानिना, अतो अनुमेयो भगवत प्रमादो भगवत प्रसादो जो दुर्लभो अकिंचन गोचरो अन्ने। जो त्रिग वर्ग की कामना करने वाले हैं उनको तो कृष्ण कुछ न कुछ दे देंगे, कामना करने वाले को दे देंगे, किंतु जो अकिंचन है भगवत प्रसाद भगवत सेवा के बिना और कुछ नहीं चाहते हैं, ऐसे अकिंचन जगत में दुर्लभ है। उसी अकिंचन की ये कह रहे हैं कि अकिंचन, अकिंचन में निराभिमान, संसार का कोई अभिमान उनके अंदर में नहीं है, बस अभिमान केवल है कि मैं कृष्ण का सेवक हूं, कृष्ण का दास हूं। भगवत अर्थम तत्त सर्व परिग्रह, जिन्होंने भगवान के लिए अपने समस्त परिग्रहों को छोड़ दिया। परिग्रह माने क्या, खाना पीना देह दही कपड़े और संसार में जो अपने कहे जाने वाली या अपनी कही जाने वाली चीजें हैं सब काम उन्होंने परिग्रह, जो कुछ भी संग्रह है वो सब कुछ छोड़ दिया है जिन्होंने। अथवा भगवती कृतात्मनिवेदन देह दैहिक आद्य अशेष समर्पणा, जिन्होंने अपना सर्वस्व देह दैहिक जो कुछ है कृष्ण के चरणों में सदा के लिए अर्पित कर रखा है, अपनी आत्मा को भी कृष्ण के लिए समर्पित, अब मैं आपका सेवक हूं सेविका हूं, मैं तुम्हारे दरवाजे पर कुत्ते की भांति हूं, तू तू बुलाएगा और प्रतीप जने रहे आशित मना, जो अभक्त है उनको आपके गण में इधर में नहीं आने दूंगा, और जो कुछ भी जूठा आप दे देंगे, जो कुछ भी, ये नहीं कहूंगी कहूंगा आज रोटी में आपने घी लगाई नहीं और ऐसे ही दे दिया, आज पकौड़ी नहीं बनाया दिया नहीं, कोई भी मेरी मांग नहीं रहे, अनकंडीशनल सरेंडर कर। इस तरह से अकिंचन, कोई भी कुछ नहीं, भगवान से कोई भी कुछ मांगने की नहीं, जो कुछ तू हमको डाल देगा मैं वही पर लेकर के संतुष्ट रहूंगा। जीवन निर्वाह के लिए, जीवन निर्वाह भी जरूरी है किंतु भगवत इच्छा से जो कुछ भी आ जाता है भगवत भक्त लोग उसी को ग्रहण करके अपना जीवन निर्वाह, उधर में दृष्टि ही नहीं रहती, वो अभ्यास वस्ता ले लेते हैं। किनके लिए कह रहे हैं, निष्किंचन के लिए, परमाकिंचन के लिए कह रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग ही को भगवान कुछ दे नहीं पाते हैं, इनको अपना प्रेम के अतिरिक्त और कुछ इनके पास में नहीं बचता है जिनको देते, क्योंकि और कुछ लेने ही वाले नहीं है। इसलिए अकिंचन जो है, अकिंचनों में शरणागति तो होती ही है और साथ साथ ये भी रहता है, ये भगवत भक्त होते हैं। इसलिए जह प्रसाद अतएव अन्य दूसरों के लिए जो दुर्लभ कैवल्य इत्यादि हैं वो सब भी दे देते हैं, किंतु इनको कुछ दे नहीं पाते। इसके लिए कहते हैं सतां दिशत अर्थी अर्थिन अर्थितो नीणां नैवार्थदो जब पुनरअर्थितो जता। प्रभु ऐसे हैं, यह बात सत्य है, जो कुछ कोई अर्थी अर्थात कामना करता है भगवान के निकट उसको वो दे देते हैं। हे नीणां, वो सब कुछ देने में समर्थ हैं, किंतु प्रभु कुछ दयालु हैं। यदि एक पिता है या माता है, उसके सामने पुत्र यदि मट्टी खा रहा हो तो बाप या मैया क्या करेंगे? उसका हाथ पकड़ लेंगे, मुख में खा लिया होगा तो उसको निकाल देंगे और उसके बदले में उसे मीठी कोई चीज, संदेश है, मिठाई है, रसगुल्ले हैं या कोई चीज जो घर में होगी खाने के लिए, लड्डू है, उसके मुख में दे देंगे, वो खाओ, निकाल लेते हैं। ऐसे यदि कोई कामी व्यक्ति भी है और कामना करता है भगवान से क्या चीज की? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी मट्टी की, और वो मट्टी भी कैसी? गंदी भी मट्टी, और उसको मुख देने से उसमें केचुए पेट में पड़ जाते हैं मट्टी खाने से, तो इसके पेट में केचुआ पड़ जाएगा और रोगी हो जाएगा। इसलिए मैया उसके मुख से भी पड़ी हुई मिट्टी को भी जिस प्रकार से बाहर कर लेती है और उसे संदेश या लड्डू या और कोई अच्छी चीज देती है, ऐसे भगवान भी बड़े दयालु होते हैं, कामना करने वाले लोगों की समस्त कामनाओं को भी बाहर करके दिशक अर्थितम अर्थितो ऐसी कोई चीज नहीं देते हैं जिसे फिर उसको मांगने की आवश्यकता हो। एक धर्म है, धर्म के द्वारा अर्थ हम लोग अर्जन करते हैं, अर्थ के द्वारा कामनाओं की पूर्ति हम लोग, धर्म अर्थ काम, और कामना के द्वारा फिर क्या कर लेते हैं? काम की पूर्ति हो गई ना, फिर धर्म किया, फिर अर्थ हुआ, फिर काम हुआ, ऐसे ये त्रिवर्ग चलता है। मुक्ति भी मिल जाएगी तो उसे कुछ लाभ नहीं हुआ, इसलिए भगवान ऐसी चीजों को देते ही नहीं है जब फिर मांगने की जरूरत पड़ जाए। जैसे हमारे बलि महाराज ने उनको कहा, वामन देव, अरे ये क्या तीन हाथ की भूमि मांग रहे हो, तीन पग भूमि, कुछ ऐसा मांगो जो तुमको मांगना ना पड़े, राज्य ले लो, तुमको मांगना ना पड़े, तुम तो छोटे से बालक मूर्ख बालक हो। ऐसे हम लोग भी भगवान से ऐसा ना मांगे फिर मांगना पड़े, फिर खत्म हो जाए फिर मांगना पड़े, हम लोग यही मांगते हैं और कहते हैं कि प्रभु बड़े दयालु, वो ऐसी चीज नहीं देते। क्या देते हैं? जब फिर उसको कभी भी मांगना ना पड़े ऐसा प्रेमा भक्ति उस व्यक्ति को देते, ऐसे भगवान दयालु हैं। ऐसा कौन दयालु? फिर अपने इनको जिन्होंने एक वर्ष तक दूध पिया, स्तन पिलाया बड़े प्रेम से, उन मैयाओं को और उन गैयाओं को क्या देंगे? फिर यशोदा माँ जो इनके लिए प्रेम में पागल हो रही हैं, सारा जीवन उनकी सेवा करते हैं, उनको ये क्या देंगे? हमारी ये समझ में नहीं आता। अभी हम लोग कीर्तन करने के लिए चलेंगे, कितना बज गया? 6 बज गया। अभी हम तुरंत अभी चलेंगे, जल्दी से 5 मिनट में आरती समाप्त कर दें और फिर हम लोग चलेंगे सब खजांची जी के यहाँ। खजांची साहब के हम लोग ऋणी हैं, जितने दिन तक थे, चाहे वर्षा हो, बिजली कड़के, वज्र गिरे, वो मानते नहीं थे। जहाँ हम उनको कहते थे वहाँ पर सब समय जाते थे और हम लोगों के बड़े अनन्य प्रेमी थे, इसलिए वहाँ पर तो जैसे तैसे सब लोग हम लोग चलेंगे और वहाँ से 8 घंटा रह करके हम लोग चले आएंगे, श्रीवास जी के यहाँ कीर्तन होगा और वहाँ पर जाएंगे, इसलिए सब लोग चलेंगे।
कल के मोर मुकुट वंश रखा कीर्तन,
और कल शाम को यहीं पर पास ही में मोर मुकुट बंसल के यहाँ पर हम लोगों का खूब लोग एकादशी को अच्छी तरह से एकादशी करेंगे, जीवन भर एकादशी न छूटे, और भगवान का भजन भी करें, भगवान से कुछ मांगे मत, भगवान देने पर भी बहाना बना करके देंगे तभी मत लीजिए। भगवान के चरणों में प्रेम हो और ब्रज का प्रेम से नीचे की घटिया कोई चीज मत मांगो, तब तो जीवन कृतार्थ हो जाएगा। हरे सब लोगों को लेकर के आरती होते ही आप सब लोगों को लेकर के उनके यहाँ पहुंचिए और हम यहाँ से जाएंगे।